एस्ट्रो लाइफ लेकर आए हैं आपके लिए
ग्रहों का खेल
विद वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर जगजीत. क्या सुखी होना संभव है? अनेक लोग यह जानने की उत्सुकता रखते हैं कि क्या आज की भागदौड़ बड़ी आधुनिक दुनिया में सुख का अस्तित्व है भी या नहीं. किसी व्यक्ति के पास बेहिसाब धन हो सकता है, अपनी प्रत्येक इच्छित वस्तु भी हो सकती है, लेकिन फिर भी खुशियां उससे कोसों दूर हो सकती हैं. ऐसे किसी भी व्यक्ति का उदाहरण ले सकते हैं जिसने सारा जीवन काम किया है, कठिन परिश्रम किया है और एक बड़े परिवार को पाला है. वह जीवन भर अपने सेवानिवृत्त होने का इंतजार करता है और उस समय का भी जब वह सुखी होगा और उसके पास वह सब कुछ करने के लिए पर्याप्त समय होगा जो वह करना चाहता था. लेकिन अब जबकि वह सेवानिवृत्त हो गया है तो क्या वह खुश है? नहीं. अब वह बैठा हुआ उन पुराने दिनों को याद कर रहा है जब वह कठिन परिश्रम किया करता था. सुख ही हमारे जीवन की प्रमुख समस्या है. वर्तमान युग की परिकल्पना एक सुखी विश्व के रूप में की भी जा सकती है और नहीं भी. आपके लिए इस दुनिया में सुखी रहना संभव हो भी सकता है और नहीं भी. लेकिन फिर भी लगभग हर किसी का लक्ष्य अपने जीवन में सुख समृद्धि हासिल करना ही है. कभी कभी हम अपने चारों ओर की दुनिया पर नजर डालते हैं और कहते हैं यहाँ कोई सुखी नहीं हो सकता. याद करें जब आप लगभग 5 साल के थे, आप सुबह उठकर बाहर निकले और आपने उस दिन को देखा, वह नया दिन बहुत सुंदर था. आपने फूलों को देखा और वे फूल आपको बहुत सुंदर लगे थे. 25 वर्षों के बाद जब आप आज सुबह सोकर उठते हैं, आप फूलों पर एक नजर डालते हैं, वे उतने जीवंत नहीं लगते. यह दिन भी कोई खुशियों भरा दिन नहीं है. वैसे क्या बदल गया है? आप जानते हैं कि ये वही फूल है, यह दुनिया भी वही है, फिर भी कोई चीज अवश्य बदलती है. संभवतः यह आप ही हैं जो बदल गए हैं. वास्तव में एक छोटा बच्चा अपने जीवन पर मनोहरता बिखेर कर जीवन से अपनी खुशियों को हासिल करता है. वे अपने छोटे छोटे जादुई हाथों को लहराकर अपने चारों ओर के जीवन को और सजीव एवं रोचक बना देता है. यह सब वह कहां से करता है? अपनी मोटरसाइकिल पर गलियों में आने जाने वाले किसी लंबे शक्तिशाली सिपाही को देखकर यह बच्चा आगे चलकर सिपाही बनना चाहता है. जी हाँ, निश्चित ही एक सिपाही बनना चाहेगा. लेकिन 25 साल बाद उसी सिपाही को गाड़ियों की रफ्तार जांचते हुए देखकर वह कह उठता है, भाड़ में जाए ये सिपाही. यहाँ इस दृश्य में क्या चीज बदल गई है? क्या सिपाही बदल गया है? नहीं, केवल सिपाही के प्रति नजरिया बदल गया है. जीवन के प्रति व्यक्ति का नजरिया ही उसके जीवन में हर संभावित परिवर्तन लाता है. अब जानते हैं, इस तथ्य को खोजने के लिए आपको हजारों प्राचीन किताबें नहीं पलटनी होगी. लेकिन फिर भी कभी कभी इस तथ्य की ओर बार बार इशारा करने की आवश्यकता होती है कि जीवन इतना नहीं बदला जितने की आप. ऐसे कई तरीके हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं और सबसे आसान तरीका है कि हम अपने वातावरण पर एक नजर डालें. जरा अपने चारों ओर नजर डालें और पूछें, मैं कहां पर हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं. और फिर एक बार जब आपको यह पता लग जाए कि आप कहां हैं और क्यों हैं, उसके बाद ये पता करने की कोशिश करें कि किस प्रकार आप उस घर को कुछ और ज्यादा रहने लायक बना सकते थे. जिस दिन आप अपने वातावरण को निर्मित करना रोक देते हैं, जब आप अपने चारों ओर की वस्तुओं को निर्मित करना बंद कर देते हैं, जब आप अपने जादुई हाथों को लहराना और अपने चारों ओर की वस्तुओं को अपने जादू और खूबसूरती से मनोहारी बनाना बंद कर देते हैं, तभी से दुनिया की तमाम चीजें भी जादुई और सुंदर दिखना बंद हो जाती हैं. यह भी संभव है कि कभी कुछ साल पहले अपने हाथों के उस जादू की उपेक्षा करना शुरू कर दिया हो. जो लोग जीवन के प्रति उदासीन हो गए हैं, वे जीवन के प्रति उदासीन केवल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जीवन का निर्माण करना बंद कर दिया है. यहाँ हमें लोगों के बीच केवल एक ही अंतर दिखने को मिलता है. हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो दुखी और परेशान है और जीवन के साथ नहीं चल पा रहा, जो बीमार है, जिसे जीवन में कोई आशा नहीं दिखाई पड़ती. जीवन उसे संभाल रहा है, दौड़ा रहा है, बदल रहा है, निर्मित कर रहा है. जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति भी है जो खुश है, प्रसन्न है, सक्षम है, जिसे लगता है कि जिंदगी में काफी कुछ ऐसा करने वाला है जो उसके करने योग्य है. उस व्यक्ति में हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि वह जीवन का निर्माण कर रहा है. लेकिन एक ही अंतर यहाँ देखने में आ रहा है कि क्या आप जीवन का निर्माण कर रहे हैं या जीवन आपका निर्माण कर रहा है. बहुत लंबे समय से आदमी यह जानने की कोशिश करता चला आ रहा है कि वे अपने तथा अपने साथियों के मन एवं परिस्थिति को कैसे बदल सकता है. वास्तव में अब से कुछ साल पहले एक आदमी के पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं थी. लेकिन आज हम एक बहुत तेज रफ्तार दुनिया में जी रहे हैं. हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ किसी भी समय चमत्कार हो सकता है और ऐसा हुआ भी है. अब जबकि उसने अच्छी तरह से भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है, बल्कि भौतिक जगत जब उसका लिए एक मोहरा है, वह इसके साथ बहुत कुछ कर सकता है और इस पर विजय प्राप्त करके अब वह स्वयं पर विजय प्राप्त कर सकता है। वास्तविकता यही है कि उसने स्वयं पर विजय पा ली ही है। यदि उसे ऊर्जा के बारे में पर्याप्त जानकारी होती, विशेष रूप से स्वयं की ऊर्जा के बारे में, वह जिसने उसे सोचना सिखाया, वह ऊर्जा जो कि वह स्वयं था और वह आकाश भी जो उसे घेरे हुए था, तो निश्चित ही वह अपने आप को जान लेता। संक्षेप में, हजारों सालों से यही तो उसका लक्ष्य रहा है, अपने आप को बचाना। जगजीत जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में और हम अपने आपसे अभी अपने जो हॉरोस्कोप है उसके बारे में जानकारी लेते हैं।
जी हाँ, नमस्कार जी।
जी जगजीत जी, आज सबसे पहला हॉरोस्कोप हम कौन सा शुरू करेंगे?
जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1999 और इनका जो क्वेश्चन है स्टडी के विषय में है कि ये आगे चलकर अगर मेडिकल का विषय लेते हैं तो इनके लिए क्या अच्छा रहेगा, कि इनके होरोस्कोप में ग्रहों के कौन से योग बन रहे हैं कि जो इनको वो फील्ड जो स्टडी का है वो अच्छा रहे। अगर हम इनके ग्रहों के, मैं सबसे पहले इन्हें बताना चाहूंगा कि इनके जो योग हैं या इनके होरोस्कोप में जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो इस तरह से है कि इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं असेंडेंट की बात करूं तो वो सेकंड भाव में है, शनि के साथ है। शनि इनके होरोस्कोप में जो है वो डेबिलिटेट है और जो इनका क्वेश्चन है वो फिफ्थ भाव से रिलेटेड है और फिफ्थ भाव जो है वो राहु से रूल्ड है। अगर मैं चंद्र की स्थिति देखूं इनके होरोस्कोप में वो भी कहीं जाकर अच्छी नहीं है और मंगल की भी स्थिति अच्छी नहीं है इनके होरोस्कोप में। तो ये कुल अगर मैं इनकी बात करूं जो योग है ये मेडिकल के विषय में सोच रहे हैं, क्योंकि राहु जब पंचम रहता है और मंगल इस पोजीशन पर और चंद्रमा के साथ रहता है तो सबसे पहले तो बच्चे का अपना जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो नहीं रहता है। कई बार होता है कि पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, भाई नहीं तुमको मेडिकल ही करना चाहिए, यही फील्ड तुम्हारे लिए अच्छा है, और बच्चा खुद डिसीजन नहीं ले पाता जिस चीज में वो कैपेबल होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई वो इंजीनियरिंग लाइन में कैपेबल है, वो अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो इंजीनियरिंग लाइन में जाए, वो मेडिकल करे। तो अगर होरोस्कोप में चंद्रमा की स्थिति या मंगल की स्थिति अच्छी होती है तो बच्चे का खुद का जो डिसीजन है वो अच्छा रहता है, वो पेरेंट्स को भी समझा पाता है भाई नहीं मेरा इसमें इंटरेस्ट है, ये चीज मेरे को अच्छी रहेगी। और इनके जो ग्रहों के योग बन रहे हैं तो इनके होरोस्कोप में अगर मैं बोलूं कि सूर्य या शनि के जो योग बन रहे हैं वो मेडिकल के लिए इन्हें आगे चलकर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि राहु के जो योग बन रहे हैं हाँ ये मेडिकल में आ जरूर जाएंगे, लेकिन उसके बाद कारण कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा आफ्टर वन ईयर या टू ईयर इनका दिल ना लगे या वो ये ग्रेड ना ले पाए और कहीं ना कहीं इनकी जो स्टडी है वो डिसकंटिन्यू हो जाए। मैं तो इन्हें यही कहना चाहूंगा कि मेडिकल के बजाय अगर ये किसी लीगल फील्ड में जाते हैं, यानी कि अगर ये कोई भी लीगल फील्ड में स्टडी करते हैं वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके होरोस्कोप में ऐसे योग बन रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति आगे चलकर अगर बैरिस्टर या सॉलिसिटर या कोई भी लीगल लाइन अपनाता है तो वो बहुत अच्छी रहती है। कई बार ऐसा भी देखने में आया कि जब हम अपने ग्रहों के योग के अकॉर्डिंगली कार्य करते हैं तो हमें ज्यादा हार्ड वर्क जो है वो नहीं करना पड़ता और हमें जो अचीवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा रहती है, और ऐसा ही इनके होरोस्कोप में है कि इनके होरोस्कोप में जो योग बन रहे हैं अगर ये लीगल लाइन में जाएंगे तो इन्हें ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इन्हें उसे बेनिफिट जो है वो बहुत ज्यादा अधिक रहेगा और इस लाइन से इन्हें आगे चलकर भी बेनिफिट रहेगा। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया कि किसी के, मैं बोलूं कि मेडिकल के इतने अच्छे योग नहीं है, उसने मेडिकल की जो स्टडी है वो भी कंप्लीट कर ली लेकिन उन्होंने मेडिकल से रिलेटेड जॉब ना कर जॉब किसी दूसरे ही फील्ड में वो कर रहे हैं, ऐसा भी देखने में आता है जब ग्रहों के कुछ योग रहते हैं। तो मैं इन्हें यही कहना चाहूंगा कि इन्हें अगर लीगल लाइन में स्टडी में डाला जाए या लीगल लाइन से रिलेटेड कोई भी स्टडी करें तो वो बहुत इनके लिए अच्छा रहेगा. और खास करके मैं इनके पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि इन्हें लीगल लाइन में ही डालें, क्योंकि इनकी मून की या मंगल की पोजीशन ऐसी नहीं कि वो पेरेंट्स को कन्विंस कर सके, क्योंकि पेरेंट्स जरूर बच्चे को कन्विंस कर लेते हैं भाई नहीं ये फील्ड तुम्हारे लिए अच्छा है. तो इनके लिए अगर लीगल लाइन में ये जाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा. और जैसे कि इस साल भी इनके कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं, अगर मैं चंद्रमा की बात करूं या शनि बृहस्पति की बात करूं, उसके भी योग इनके होरोस्कोप में जो हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं. ऐसा व्यक्ति अगर मदर की सलाह से कार्य करता है या जब भी घर से निकलता है मदर का आशीर्वाद लेकर कॉलेज या जहां स्कूल भी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वो बहुत उनके लिए अच्छा रहता है. फिर भी ग्रहों से अच्छा फल प्राप्त करने के लिए अगर जब भी ये कभी धर्म स्थान पर जाते हैं वहां पर राहु से रिलेटेड वस्तुओं का दान, जैसे किचन में जो बर्तन यूटेंसिल्स यूज होते हैं उनका अगर वहां पे जाके दान करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है. लेकिन इन्हें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इन्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि भाई मैं अगर मैं ये कार्य करने के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं तो वो मैं कार्य पूर्ण कर लूंगा. क्योंकि मून की जब ऐसी स्थिति रहती है तो इंसान थोड़ा विवरिंग माइंड होता है, डिसीजन मेकिंग की पावर की कमी रहती है. और जैसे कि इनका क्वेश्चन था कि इन्हें कौन सा फील्ड, तो मैं इन्हें यही कहना चाहूंगा कि इनके लिए जो है वो लीगल लाइन में कोई भी स्टडी करें इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा.
जी जगजीत जी बहुत अच्छा. और आप की डिटेल जो है अपने लिसनर को एक बार फिर से शेयर कर देते हैं ताकि वो चाहे तो आपसे संपर्क बना सकते हैं, आपसे अपने हॉरोस्कोप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं. और जैसा कि हम हर शनिवार को अपने लिसनर्स के साथ सुबह जुड़ जाते हैं उनके हॉरोस्कोप के साथ, और उनका कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजिकली क्वेश्चन होता है तो उनको उस क्वेश्चन को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं. आप भी अगर चाहें तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए, या फिर जगजीत जी को डायरेक्ट बात कर सकते हैं 02103901133 पर. लैंडलाइन है 09278784. वेबसाइट है जगजीत की www.astrologerjagjeet.com.
सुख वो कभी भी नहीं पाएगा माता पिता को जो दुख देगा. वो कभी भी नहीं पाएगा माता पिता को जो दुख देगा. जीवन में दुख वो सहेगा सुख वो कभी भी नहीं पाएगा माता पिता को जो दुख देगा. खुद गीले में तुमको सूखे में सुलाया सोकर खुद गीले में हो सोकर खुद गीले में तुमको सूखे में सुलाया. काहे मन से तूने उनको आज है भुलाया सुख होगा जब सुख उनको देगा माता पिता को गुरुओं ने संतों ने हमको बात ये बताई है, वेदों ने संतों ने हो वेदों ने संतों ने हमको बात ये बताई है, माँ पिता की सेवा में ही सबकी भलाई है, कर उनकी सेवा तो जग से तरेगा, माता पिता को जो दुख देगा।
जी जगजीत जी, अभी आज का जो दूसरा हॉरोस्कोप है हमारे साथ हमारे पास, वो कौन सा हॉरोस्कोप है?
जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1989, और इनका जो क्वेश्चन है मैरिज के विषय में है, उस योग के विषय में इन्होंने पूछा है। अगर इनका हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो इनका जो क्वेश्चन है वो पांचवें और सातवें घर से भी रिलेटेड है, क्योंकि सातवां घर पार्टनर्स का रहता है, और सबसे पहले जब भी मैरिज के योग देखे जाते हैं तो सेवंथ भाव को जरूर देखा जाता है। अगर हम इनके होरोस्कोप में देखते हैं तो इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वो है शनि, और शनि का इनके होरोस्कोप में शुक्र के साथ जो योग बन रहा है ये कुछ अच्छा नहीं है, और लगन में इनके राहु है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति की जो मैरिज रहती है वो डिले रहती है, कारण कुछ भी रहे। कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि मैरिज के विषय में कहीं प्रपोजल नहीं आते या कहीं बात नहीं होती, होता क्या है कि कई बार ग्रहों के कुछ ऐसे योग रहते हैं जिस वर्षफल में उस वक्त अगर मैरिज की कहीं बात चली तो ये जो इनके होरोस्कोप में योग बन रहे हैं, जैसे मैंने शुक्र शनि या राहु की मैंने बात की, तो इंसान बहुत उसको मैरिज की बात को इतना गंभीर ले लेता है कि वो बहुत सारी आगे प्लानिंग्स करता है कि भाई मेरे इन लॉज ऐसे रहेंगे या वो ऐसे रहेगा ये ऐसे, और कई बार ऐसा रहता है कि सभी चीजें जो है वो मैच नहीं होती, और यही एक कारण रहता है कि मैरिज डिले हो जाती है। और जैसे कि इनके होरोस्कोप में अगर मैं सूर्य की बात करूं, सूर्य बुध मंगल के योग जरूर अच्छे हैं, लेकिन सूर्य इनके होरोस्कोप में डेबिलिटेट हैं, और ये सभी कुछ योग ऐसे मिलके बनाते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो मैरिज रहती है ये डिले जरूर हो जाती है। और जहां तक रहा इन्होंने पूछा कि मैरिज के योग कब हैं, तो इनके जैसे कि लास्ट ईयर भी जो निकला है उस वक्त भी मैरिज के योग थे, अगर उस वक्त ये कुछ अच्छा डिसीजन लेते तो वो भी साल इनके लिए अच्छा रहता, लेकिन अभी इनके जो होरोस्कोप हैं उसमें कुछ ऐसे योग नजर नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, नवंबर के बाद इनके कुछ प्लैनेट्स चेंज होंगे, नवंबर 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद इनके कुछ मैरिज के जो योग हैं ये फिर बन रहे हैं, कि उस वक्त जो इनके मैं चंद्र की बात करूँ या बृहस्पति की बात करूँ या शनि और शुक्र का जो योग है और या राहु की मैं बात करूँ, तो उनकी स्थिति नवंबर के बाद कुछ चेंज होगी, और उस वक्त भी इन्हें जो मैरिज है उसकी काफी प्रपोजल आएंगे। और मैं इन्हें यही कहना चाहूंगा कि इन्हें सभी चीजों को, मैं ये नहीं बोलता कि भाई बहुत ध्यान से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी जिंदगी का रिश्ता रहता है, लेकिन फिर भी इन्हें यानी कि बहुत ज्यादा उसके विषय में नहीं सोचना चाहिए, मैं तो इन्हें यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ग्रहों के कुछ ऐसे योग रहते हैं जैसे कि मैंने सूर्य की बात की पहले, या शुक्र जो होता है उसका बहुत बड़ा मेन रोल रहता है, महत्व रहता है. वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जब शनि से दृष्ट रहता है या दूसरे ग्रहों से दृष्ट रहता है तो हमारी जो सोच है कुछ वैसी ही हो जाती है. और मैंने यही कहना चाहूंगा कि नवंबर के बाद इनके कुछ प्लैनर्स चेंज हो रहे हैं जो कि मैरिज के लिए इनके लिए अच्छे रहेंगे, और इन्हें शुक्र से जो अच्छा फल है ये प्राप्त करने के लिए अगर ये धर्म स्थान पर कहीं कपूर का दान करते हैं ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अगर धर्म स्थान पर ये कभी जाते हैं या चने की दाल का भी दान करते हैं तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. और इनके जो मैरिज के योग हैं वो नवंबर के बाद जरूर बन रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि इन्होंने जरूर सुन लिया होगा. और नवंबर के बाद जहां भी इनकी बात चले, अगर उस वक्त ये कुछ जैसे मैंने बोला कि चने की दाल या कपूर का दान करते हैं तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा जी.
चलिए, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं. और जगजीत जी, लिसनर्स को बता दें कि वो हमेशा की तरह हमें एक शिकायत भी करते हैं कभी कभी कि हम उनका हॉरोस्कोप है जो अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करते, मगर हमारे पास जो डिटेल कम्प्लीट होती है हम उन्हीं हॉरोस्कोप को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग जो भी एक सवाल है उसका जवाब दिया जाता है. इनकम्प्लीट डिटेल मीन्स नथिंग, तो हॉरोस्कोप नहीं बन पाएगा और उसका फिर रीडिंग भी नहीं हो पाएगा. तो जगजीत जी, आप अपने लिसनर्स को बताइए कि आप उनसे जब भी वो आपको डिटेल भेजे तो किस तरीके से वो आपको डिटेल भेजे और क्या क्या पर्टिकुलर वो रहे ताकि आप उनका हॉरोस्कोप अपने ऑन एयर हम उनके हॉरोस्कोप
देखिए. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन रहता है वो कंप्लीट होना चाहिए. कई बार बिजनेस के विषय में पूछा जाता है कि भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूँ अच्छा रहेगा या नहीं, तो उस वक्त भी पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस के भी बहुत सारे योग रहते हैं कि भाई उसके लिए इस फील्ड में अच्छा रहेगा, उस व्यक्ति के लिए इस फील्ड का जो बिजनेस है ये अच्छा रहेगा. और दूसरा, जब भी होरोस्कोप की डिटेल भेजते हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए. कई बार ऐसा भी है टाइम ऑफ बर्थ लिखा जाता है लेकिन एएम है सुबह का है या पीएम शाम का है ये नहीं लिखा जाता, और कई बार सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही रहता है उसमें, मैं बोलूं किस सिटी का है या कौन सी कंट्री का बर्थ है ये मेंशन नहीं रहता. तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ. और फोर्थ, जो भी एक क्वेश्चन रहता है वो पर्टिकुलर होना चाहिए.
जी जगजीत जी, और इसी के साथ हम एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और उसके बाद आपसे फिर रूबरू होते हैं.
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान. सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान. आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा रहा नर होकर नंगा, छली और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान. भक्त रहीम के बंदे रचते आज फरेब के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान. देख तेरे संसार
संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
जी जगजीत जी, वक्त हो गया कि हम अपने लिसनर के जो सवाल हैं उसमें एक सवाल ये भी था कि हम लोग एक उनका साइंस स्टार पढ़ के बताएं, तो आज जो लिसनर्स का सवाल है वो कौन से साइंस स्टार के ऊपर है?
जी हाँ, आज धनु यानी के सैजिटेरियस के विषय में है
जी।
और इस राशि को जो प्लैनेट हैं रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर यानी के देवगुरु बृहस्पति, और इस राशि के जातक अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पीले रंग का येलो कलर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। मेरे कहने का भाव ये है, अगर कपड़े धारण करते हैं कभी तो उसमें अगर येलो कलर रहे थोड़ा सा भी तो वो बहुत अच्छा रहता है। और इस राशि के जातक अगर कभी बिजनेस में प्रॉब्लम रहती है या जॉब में रहती है तो उस वक्त अगर पिता का आशीर्वाद लेते हैं या पिता की दी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, इवन कि मैं कपड़ों की भी बात करूं, तो उस वक्त ये बहुत अच्छा समझा जाता है। और कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि कई बार घर में हम देखते हैं भाई ये वास्तु दोष है या हम उसको ठीक नहीं कर पाते क्योंकि इतनी गुंजाइश नहीं रहती कि जो आर्किटेक्ट डिजाइन है वो वैसा ही रहेगा, तो उस वक्त अगर घर में चांदी के किसी भी बर्तन में या वो कटोरी हो या कोई गिलास रहे, कोई भी चांदी का बर्तन रहे, उसमें हल्दी लगाकर या हल्दी डालकर घर में कहीं भी स्थापित करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। इस राशि के लिए सबसे उत्तम दान जो माना गया है वो है घी, दही, कपूर, इन चीजों का जो दान है धर्म स्थान पर या कहीं करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना गया है। कई बार ऐसा भी रहता है कि इस राशि के जातक बोलते हैं कि घर में बच्चों की प्रॉब्लम है या स्टडी में ऐसे हैं, तो उस वक्त अगर घर में जो भी पौधे लगाएं उनके अगर येलो कलर के फूल रहते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है खास करके बच्चों के लिए। और इस राशि के जो जातक हैं उन्हें दान धर्म कर्म ये जरूर करना चाहिए, अगर ये करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। और ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस राशि के जातक अगर जब भी कोई तीर्थ स्थान पर जाता है तो उनकी अगर मदद करते हैं किसी भी तरीके से तो वो बहुत बढ़िया जो अच्छा फल है ये जरूर प्रदान करते हैं। और कई बार ऐसा भी रहता है कि भाई हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तो उस वक्त अगर थोड़ा सा दूध अपने ऊपर डालकर उसके वक्त उसके बाद शावर लिया जाए, मैं बोलूंगी चाहे एक चम्मच दूध डालकर स्नान किया जाए तो ये बहुत अच्छा माना गया है जी।
जी 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 जी। और लिसनर्स को एक बार फिर से बता दें कि अगर वो चाहते हैं आपसे बातें करना, आपसे जुड़ना और अपने हॉरोस्कोप के बारे में जानना, तो आपको कांटेक्ट किया जा सकता है आपके मोबाइल पर 02103901133, लैंडलाइन है 09278754, और आपका ईमेल का एड्रेस है info@astrologerjagjeet.com। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने प्रोग्राम से इजाजत लें, मगर अगले सप्ताह फिर से इसी वक्त इसी दिन अपने लिसनर्स के साथ जुड़ेंगे। और तब तक के लिए सभी के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं, नमस्कार।
नमस्कार जी।
लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, ग्रहों का खेल,
planetaudio.org.nz/ग्रहों का खेल।